भारत की सांस्कृतिक फिजा में शायद एक नई शुरुआत हुई है और इस शुरुआत का नाम है हरी हो गति मेरी। ये कथक प्रस्तुति है जो पूरी तरह से उन कवियों पर आधारित है जो थे तो मुसलमान लेकिन कृष्ण भक्ति के गीत पद और कविता लिखा करते थे। इस प्रस्तुति की संकल्पना की है संजय नंदन ने, कोरियोग्राफी यानी नृत्य संरचना की है मशहूर कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास ने और अंततः इन कविताओं को नृत्य में ढाला कथक नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने। तो दोस्तों, इस अनोखी प्रस्तुति के बारे में हमने थोड़ा और जानने की कोशिश की और सबसे पहले सवाल पूछा संजय नंदन से कि उनके मन में ये विचार कैसे आया।
पल्लवी, इसका कॉन्सेप्ट के पीछे सोच ये है कि हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की भक्ति में गीत लिखे, पद लिखे। जब इस भाव से हमने शुरुआत की तो सबसे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका शीर्षक था द मौलाना हु लव्ड कृष्णा, और यहाँ से बात शुरू हुई और हमने धीरे धीरे जब जानकारी इकट्ठा की तो एक पता चला कि एक पूरी की पूरी परंपरा है जो काफी सालों से चली आ रही है, जो 12वीं शताब्दी में शुरू होती है और जो आज तक चली आई है, और उसी को जब आप बुनना शुरू करते हैं तो पूरी की पूरी परंपरा, पूरी की पूरी विरासत, जिसमें आप दूसरे धर्म को मान रहे होते हैं, फॉलोअर होते हैं, लेकिन आप कृष्ण भक्ति में भी लिखते हैं। तो विचार यही था, कॉन्सेप्ट ये था, कॉन्सेप्ट की खोज इस तरह से हुई।
वहीं हमने कथक नृत्यांगना गौरी दिवाकर से पूछा कि संकल्पना को नृत्य में परिवर्तित करना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि जब ये बताया कि कॉन्सेप्ट ये है और ऐसी ऐसी सारी चीजें, टेक्स्ट जितनी सारी इन्होंने हमें बताई थी, तो ये जरूरी नहीं होता है कि डांस में जो चीज आप बोलते हैं, सुनते हैं या रिसाइट करते हैं एक कविता की तरह, उसको आप हर चीज को आप गीत में बांध सकते हैं, है ना। जो गाने की अपनी एक राग हो तो उसमें आप बांध सकते हो या उस चीज को आप डांस में एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो चीज हर टेक्स्ट के साथ में अप्लाई नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट में जब इन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें रिसर्च करके इन्होंने दी, तो उसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि कौन से डांस करने के लायक है जिससे आप डांस कर सकती हैं और ऑडियंस तक अपने एक सूत्र में उसको बांध करके आप ऑडियंस तक पहुंचा सकती हैं। तो उस तरह से वो काफी चैलेंजिंग था क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं है कि आप बस कोई टेक्स्ट को उठाए और कोरियोग्राफ करके और एग्जीक्यूट कर दिए।
वहीं इस कार्यक्रम के संबंध में हमने संजय नंदन से ये भी पूछा कि क्या कोई विशेष कारण था कि उन्होंने इन कविताओं को नृत्य में ढालने के लिए दूसरे शास्त्रीय नृत्यों की जगह कथक को चुना।
देखिए, कथक के पीछे वजह ये थी कि कथक मूलतः जो है नॉर्थ इंडिया का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और जिस तरह के भाव थे, शब्द थे, वो कथक पे सबसे ज्यादा ज्यादा नजदीक बनते थे। जैसे उर्दू है हुआ, ब्रज भाषा है, अवधी है, इन तीनों का इस्तेमाल कथक में होता रहा है, तो कथक के जरिए उस बात को, उस भाव को, उस सोच को बताना सबसे ज्यादा आसान था और हमें लगता था कि सबसे ज्यादा जो हमारे ऑडियंस हैं वो इस क्षेत्र से आते हैं, तो उन्हें अगर हमें कोई बात समझानी है, बतानी है, तो इसके लिए कथक का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा, इसीलिए कथक का इस्तेमाल किया गया।
वहीं संजय नंदन ने इस शताब्दियों पुरानी साहित्यिक परंपरा के बारे में बताते हुए कहा,
आपके ही देश में, आपकी ही धरती पे ऐसी परंपरा रही है, ऐसी विरासत है आपकी, जहां धर्म से ऊपर उठकर साहित्य में जगह दी जाती है लोगों को, ऐसे ईश्वर को आप की आराधना करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो अपने आप में ये एक मैसेज है। एक मुस्लिम कवि अगर कृष्ण के बारे में कहता है कि हरी हो हरी हो हरी हो गति मेरी, तो एक बहुत बड़ी बात है आज के जमाने के लिए। उस समय शायद ये बहुत बड़ी बात ना हो क्योंकि आम बात हो, लेकिन हम उस परंपरा को कहीं ना कहीं भूलने लगे थे, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अब मलिक मोहम्मद जायसी का इस्तेमाल हुआ की कविता, उन्होंने लिखा मोहे तोहे राही अंतर नहीं, वो बता रहे हैं कृष्ण के द्वारा, ये बता रहे हैं कृष्ण राधा को, ये कह रहे हैं कि मुझमें और तुम्हें कोई अंतर नहीं है। तो जब मुस्लिम कवि जब इस तरह की बातें कर सकते थे 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में और करते रहे, तो ये एक परंपरा रही है एक दूसरे के आदर की, एक दूसरे के बारे में लिखने की, एक दूसरे की परंपराओं में भागीदारी की, तो उससे अलग होने की कोई जरूरत नहीं है।
हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या ये परंपरा आज भी दुरुस्त है या बहुत ही कम लोग आज इस परंपरा और साहित्य को समझते हैं।
इस पर साफ तौर पे तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो परंपरा इतने सालों से चली आ रही हो वो वैसे ही मिट नहीं जाती दो तीन खबर के आ जाने से। हाँ, चर्चा में ना हो ये बात अलग है, लेकिन रगों में तो हमारी वही विरासत जो कि हजारों साल से हमारे हमारे अंदर, इसलिए ये इतनी जल्दी मिट जाने वाली चीज है नहीं कि हम समझे कि ये गायब हो गई हो, उसे हाँ याद करना जरूरी है।
जहाँ तक शास्त्रीय कलाओं की बात है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य भी शामिल है, कई लोग ये मानते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों को पारंपरिक शैलियों में या ट्रेडिशनल और प्योर फॉर्म में ही रहना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि समय के साथ साथ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन या फ्यूजन का भी प्रयोग शायद किया जा सकता है। तो इस बारे में गौरी दिवाकर क्या सोचती हैं?
एक्सपेरिमेंट का मतलब मेरे लिए सोच की एक्सपेरिमेंट है। मैं क्योंकि प्योर ट्रेडिशनल कथक डांसर हूँ और मैं चाहती हूँ इसको कायम रखते हुए मैं हर काम करूँ। सोच में परिवर्तन होनी चाहिए, ना कि ये नहीं है कि मैं कथक कर रही हूँ मुझे कुछ नई सोच का काम करना है आज के जमाने के लिए तो मैं लियो टाट पहन के कथक करने लगूं, वो मैं नहीं चाहती हूँ। जो कंटेम्पराइजेशन है वो हमारी सोच में हो और उसके साथ में, उसी बदलाव के साथ में हमें जो मेरा आधार है, बेस है, उसके साथ में मेरे को ये काम करना चाहिए। और वो बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को उनकी सोच के हिसाब से और हमारे जो बेस है, जो जड़, मजबूत जड़ है, उसके हिसाब से उनको आगे बताना बहुत जरूरी है। वो हमारी ड्यूटी जरूर बनती है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए।